जय धवला, पुस्तक 11वीं, लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आययानं, नमो वच्चायानं, नमो लोये सौवसाऊनं, वेदगवेदगवेदगम् अवेदगं वेदगं तसं सिद्धं सिद्धं पणमिय शिरसा वोच्छं वेदगमहायारमं। यह श्री विंसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पौर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा एक यशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 110 पर आ गए। उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा में अभी हम सन्निकर्ष का प्रकरण देख रहे हैं और उसमें भी तिर्यंचों में देख रहे थे। तिर्यंचों में देखते हुए अभी हम पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों की बात पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला। अब उस समय वो अन्य क्या किस किस की करता होगा, तो यहाँ सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का तो सवाल ही नहीं, जो मिथ्यात्व की करता है तो करता ही नहीं, और यहाँ तो एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान है। तो उस समय वो 16 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, क्योंकि जिसका उदय होगा उसका उदीरक होगा और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि संकलेश में मिथ्यात्व का जहाँ उत्कृष्ट है वह अन्य का भी उत्कृष्ट हो सकता है, परंतु उसमें भी रेंज होगी तो अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, क्योंकि एक नपुसक वेद वाले ही है इस पर्याय में। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। अब अनंतानुबंधी क्रोध की बात करेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में ही अनंतानुबंधी क्रोध के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व, नपुसक वेद और 3 क्रोधों का नियम से उदीरक है, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध का उत्कृष्ट तो मिथ्या दृष्टि, अभी यहाँ सारे ही मिथ्या दृष्टि ही होंगे और उसका तो उदीरणा तो उसकी चलेगी चलेगी। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 6 नौकषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि 6 नौकषाय में जिसका उदय चल रहा है उसकी उदीरणा चल रही होगी। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। हे हो गया है करना उसका। इसी प्रकार 15 कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब 275 नंबर पर आ गए हम, मिला आपको? हाँ यहाँ पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्त की बात चल रही है, उसमें अनंतानुबंधी के उत्कृष्ट की बात करते रहे, क्योंकि अन्य हाँ इसलिए नपुंसक वेद को लिया नियम से, क्योंकि ओम से अगर देखेंगे तो तीनों वेद में से किसी भी वेद का उदय उदय ना हो सकती है, क्योंकि तीनों को ही संकलेश उत्कृष्ट हो सकता है। यहाँ तो पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों की ही बात है, इसलिए नियम रूप नपुंसक वेद बताया। अब जहाँ नपुंसक वेद के उत्कृष्ट, ये भी पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्त में ही चल रही बात, नपुंसक वेद के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, उदीर्णा तो नियम से होती ही है उसकी, परंतु अभी उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा, दोनों ही हो सकते हैं। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 16 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि ये तो प्रतिपक्षों का उदय होगा तो अनुदीरक भी कहेंगे हम तब। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। अब उन्हीं पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्तों में हास्य की बात करेंगे यहाँ पर, तो हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व नपुंसक वेद और लतिका नियम से उदीरक है। हमें तो बाहर मुंह खोल के हंसना उसी को हंसी मानते, ये तो हास्य जो कर्म है तो एक इंद्रियों को भी उसका उदय होगा कि नहीं होगा? अभी यहाँ तो अपर्याप्तों की बात चल रही है, हास्य के साथ रखा तो ये कहते हैं मिथ्या का नपुंसक वेद तो यहाँ हर समय चल ही रहे उदीरना, तो हास्य इसलिए रति को भी नियम से उदीरक कहा। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है, यानी संकलेश परिणाम के साथ अभी ये उसके मिथ्यात्व नपुंसक वेद का उदय चल रहा है, उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 16 कषाय और भय जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। वहाँ भी ऐसे लगाना है कि अरति शोक का है तो वहाँ जहाँ हम अरति की बात करेंगे तो वहाँ नपुंसक वेद का भी उदीरक है नियम से, मिथ्यात्व का भी नियम से, और अरति लिया तो शोक का भी नियम है, और बाकी का उत्कृष्ट भी हो सकता है यानी उदीरक भी या अनुदीरक, क्योंकि वह प्रतिपक्षी प्रकृति है, और जो उदीरक होगा तो उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा, और अनुत्कृष्ट में छह स्थान पतित लेगा। अब उन्हीं पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्त मनुष्य पर्याप्तों में भय के उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक जीव मिथ्यात्व और नपुंसक वेद, वो वेद हुआ वेद का नियम से उदीरक है। अब यहाँ मिथ्या भय के साथ जुगुप्सा नियम रूप नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा उसमें तो चार भंग हो सकते हैं, किसी एक का उदय भय का उदय हो या जुगुप्सा का हो या दोनों का हो या दोनों का भी नहीं हो, तो यहाँ भय के उत्कृष्ट की बात चल रही है, उसमें मिथ्यात्व और नपुंसक वेद तो नियम रूप उदीरक है। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उगिरणा करता है। 16 कषाय और 5 नौ कषायों का, ये भय छोड़कर अन्य 5 रह गए ना, वेदों को यहाँ नहीं लिया है, ऊपर नपुंसक वेद तो बता दिया था। कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए। ये तीरियंचों की पूरी विस्तार से बात हो गई। अब यहाँ मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक के समान बन गए, इतना ही बताया, क्योंकि उत्कृष्ट में कुछ वेरिएशन नहीं होगा। जघन्य में तो मनुष्यों की बात अलग से बतानी पड़ेगी। देवों में सामान्य तीरियंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें नपुसक वेद नहीं है, त्रिवेद और पुरुष वेद ही होगा और वो भी सौधर्म ईशान तक के। स्त्री वेद के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि उसका अनुभाग अगर सम्यक को प्राप्त करते हैं तो अनुभाग वहाँ हीन होकर उदय में आएगा, उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, इसलिए मिथ्यात्व में उसका उत्कृष्ट अनुभाग का उदीर्ण होगी।
त्रिवेद का उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि करेगा ना,
वही तो बता रहे, इसलिए मिथ्यात्व की नियम से उदीर्ण करने वाला कहा, और वो कब होगा तो संकलेश परिणामों में, तब उस समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट भी हो सकता है या कुछ कम अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। तो अनुत्कृष्ट होगा तो कितना होगा, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 16 कषाय और 4 नौ कषायों का, कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है।
या 4 नौ कषाय,
4 में कौन लिए है,
आशीर्वाद या रसी शब्द
नहीं,
भेजो उपसर्ग को छोड़ा है, त्रिवेद के साथ पुरुष वेद और नपुंसक वेद तो होगा,
पुरुष वेद नपुंसक वेद तो नहीं होगा, हास्यरथ बाद में लिए है मेरी ख्याल। तो यहाँ 4 नौ कषाय में अरति शोक भय जुगुप्सा लेना। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। हास्य रति का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, नहीं उस समय हास्य का उदय हो भी सकता है जहाँ त्रिवेद का उत्कृष्ट चल रहा है, परंतु यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। यानी उसके साथ जहां उसका उत्कृष्ट होगा, हास्य रति का उत्कृष्ट नहीं ही होगा, अरति शोक का तो उत्कृष्ट हो सकता है, परंतु हास्य रति का उदीर्णा हो सकती है, परंतु वो उत्कृष्ट नहीं होगी, अनुत्कृष्ट होगी, और अनुत्कृष्ट है तो कैसे कहेंगे अनंत गुणहीन वाली। अब हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व पुरुष वे और रति का नियम से उदीरक है। ये पुरुष वेद क्यों लिया लक्ष्मी बेन, क्यों हास्य की उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा, हाँ 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 सहस्रार में लेना है, उत्कृष्ट देना, इसलिए वो पुरुष वेद लिया। इसलिए ऊपर जो बात बताई थी स्त्रीवेद का करने वाला ऐसा लिया था,
पुरुष वेद का नाम
वहाँ स्त्रीवेद की उत्कृष्ट के साथ लगाया था, या हास्य के साथ लगा रहे। और वहाँ इसलिए स्त्रीवेद के साथ हास्य का उत्कृष्ट नहीं लिया था, मात्र अनुत्कृष्ट ही लिया था। स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के साथ हास्य का उत्कृष्ट नहीं लिया था, और अतिशोक वगैरह का तो उत्कृष्ट हो सकता है, वहाँ मात्र अनुत्कृष्ट लिया था, क्योंकि हास्य का उत्कृष्ट तो सहस्रार में होगा। और ये अभी हमने पढ़ना शुरू किया था, हास्य के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व पुरुष वेद और रति का नियम से उदीरक है। जो उत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है या अनुत्कृष्ट, डबल से हो गया, अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 16 कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसलिए यहाँ 16 कषाय भय जुगुप्सा ही लिया, रति तो इसके साथ नियम रूप है ही, और अतिशोक का यहाँ होगा ही नहीं, और यहाँ पुरुष वेद नियम रूप लिया है, स्त्री वेद नपुंसक वेद भी नहीं रहेगा। भवनवासी व्यंतर, अभी तक तो सामान्य देव में देखा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तथा सौधर्म ऐशान कल्प के देवों में सामान्य तिरियंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता इनमें नपुंसक वेद नहीं है। सनत कुमार कल्प से लेकर नवग्रहवेद तक के देवों में इसी प्रकार है, इतनी विशेषता इनमें पुरुष वेद ध्रुव करना चाहिए, पुरुष वेद ही है, अन्य दो वेद तो यहाँ नहीं हो गए। अनुदिष्ट से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि उसमें से प्रतिपक्षी का उदय नहीं हो रहा। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। ये 12 कषाय कौन से लेना मंदाबेन? हाँ क्यों? हाँ यहाँ सारे सम्यक दृष्टि ही है, और 12 कषायों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट तो होता रहेगा। हाँ, जहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट हुआ है, यानी वो सम्यक दृष्टि है, संकलित परिणाम वाला है, उस समय 12 कषायों में से जिसका उदय होगा उसका भी उत्कृष्ट हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। और यदि अनुत्कृष्ट होगा तो छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। पुरुष वेद का नियम से उदीरक है, जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार पुरुष वेद को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अनुदिष्ट और सर्वार्थ सिद्धि में पुरुष वेद को रखना, उसका उत्कृष्ट होगा तो अन्य का क्या होगा, तो इसी तरह से होगा। अब अप्रत्याख्यान क्रोध के 12 कषायों में से अप्रत्याख्यान क्रोध लिया, उसकी उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व 2 क्रोध और पुरुष वेद का नियम से उजीरक है। उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला ये बात है। मैं अगर करूँ मात्र वो अनुत्कृष्ट की अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, अन्य का उदीरक होगा कि नहीं होगा?
होगा ना, इसका तो सभी का होगा।
सम्यक का होगा कि नहीं होगा? शायद सम्य दृष्टि होगा तो उसके नहीं होगा ना। इसलिए शब्द क्या लिए? उत्कृष्ट के साथ, क्योंकि उत्कृष्ट किसके होगी? वेदक समय दृष्टि के होगी, शायद समय दृष्टि के इतने इतना संकलेशन होगा। ना, यहाँ अनुदिश की बात चल रही, ऊपर से चली आ रही अनुदिश और सर्वासिद्धि तक की बात चल रही। हाँ, वेदक वाले में ही लिया ये ऊपर भी, सम्यक का जिसका उत्कृष्ट है उसके साथ 12 कषाय और
6-9
कषाय का, वो तो उदय की अपेक्षा कदाचित उदीरक कहा, और उदीरक होगा तो उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। अब उनकी तरफ से कषाय की तरफ से बात करें तो प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट है तो वहाँ सम्यक की उदीरणा होगी कि नहीं होगी? तो नियम से, क्योंकि प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट वेदक समय दृष्टि के ही होगा, ये बात बताना। इसलिए वहाँ सम्यक दो क्रोध और पुरुष वेद का नियम से उगी रखा। दो क्रोध कौन से प्रेरणा बेन? बहुत अच्छा, प्रत्याख्यान और संग्रह। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 6 नौकषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, और यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार 11 कषायों को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए। अब अनुदिष्ट और सर्वासिद्धि तक के में ही वो हास्य की बात चलेगी, तो हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला सम्यक पुरुषवेद और रति का नियम से उदीरक है। इसमें वो कषाय में क्रोधमान माय लोग कुछ भी हो सकते, इसलिए इसी को नियम रूप ले लिया। अभी नियम रूप है तो कैसे करेगा? तो जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 12 कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि उदय पलटता रहता है। इसलिए यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, तथा इसी प्रकार अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब भय की बात, भय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला सम्यक और पुरुष वेद का नियम से उदीरक है। वो हास्य था इसलिए रति उसके साथ लिया था नियम रूप, भय के साथ तो नियम रूप कोई नहीं ले सकते अन्य। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 12 कषाय और 5 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। ये उत्कृष्ट के साथ सन्निकर्ष सभी मार्गणाओं में भी आदेश में भी लगाया। अब जघन्य का प्रकरण है। अब जघन्य के साथ अन्य का उसकी क्या पोजीशन होगी उसको देखेंगे। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। क्रोध मान माया लोभ में किसी का भी उदय हो सकता है, इसलिए कदाचित अनुदीरक कहा। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का भाग का चाहिए का उदीरक है। क्योंकि दोनों के एक ही पोजीशन है,
तो यहाँ पे इसका जघन्य
क्योंकि वेदक के साथ संयम प्राप्त करने वाला है, जो उसके पूर्व एक समय मिथ्यात्व में है, उस समय की बात है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, उसकी भी रेंज होगी विशुद्ध परिणाम में भी।
ये दोनों एक ही समय करते वाले
हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जैसे हमने स्थिति में देखा था, जहाँ उत्कृष्ट का बंध है वहाँ जो कोई दूसरा है तो उस तांडव प्रमाण में कितने का भी बंध लग सकता। वैसे यहाँ इसलिए छह स्थान पति दिया। अब मेरा प्रश्न, मैंने भी आगे नहीं पढ़ा है, नारखी में अगर लेना है मिथ्यात्व का जगह जहाँ जघन्य होता है तो अनंतानुबंधी का क्या होगा?
अजघन्य
होगा। अब क्या कहते जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य नारखी में वहाँ अनंतानुबंधी का क्या होगा? बिल्कुल हाँ, और अनंतानुबंधी का अजघन्य क्यों? उन्होंने तो बता दिया अजघन्य होगा, क्यों होगा जघन्य क्यों नहीं होगा? उदीर्ण कहाँ है विषय में? उदय होना चाहिए, उदय होना चाहिए। उदीर्ण किसकी कहलाती है? होने दो ना, उसकी कहाँ है? हम अनुभाग विभक्ति की कहाँ बात कर रहे हैं, अनुभाग उदीरणा की बात कर रही है। किस रूप में उदय आता है उसको उदीरणा करते है। नहीं समझा? तो अनंतानुबंधी का उदय उदीरणा कहाँ होगी? पहले दूसरे गुणस्थान में होगी। यहाँ तो हम पहले गुणस्थान की बात करते हैं। हाँ आप क्या कहते हैं? उन्होंने कह दिया अजघन्य है उनका, आप कह दो ना जघन्य है। हाँ क्यों नहीं जगन्य? कुछ नहीं हो। अच्छा आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है, मौन रखना है। हाँ मिथ्यात्व का जहाँ जगन्य होता है, मिथ्यात्व का जगन्य कब है? नारकी में। नारकी में मिथ्यात्व प्रथम ऑप्शन समय से प्राप्त करने के पहले, कितने पहले? आवलियर समय। और अनंतानुबंधी का कब होता है?
लास्ट
समय। हाँ अभी अभी आपको आया नहीं? आया मैंने अभी, उसका घटकर और उदय में आएगा बाद में, इसलिए उसको जगन्य। अभी हमने दोनों नहीं नहीं पढ़ाया, आगे केवल सोचा है, केवल सोचा है ना अभी। हाँ ये तो बहुत बार बताया है, तो वहाँ उसका सन्निकर्ष नहीं देखेंगे अभी हम, देख लो अभी देखना है तो। आदेश में बताया होगा नारकी में मिथ्यात्व का जघन्य, या इसे इसके साथ सोच लिया आदेश से
नारकी।
देखो देखो 115 पृष्ठ दूसरा पैराग्राफ।
अनंत गुण अधिक अजघन्य अनुभाग की
आदेश से नारकियों में मिला ना, 294 नंबर का पॉइंट। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला 16 कषाय 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक अनुदीरक, क्योंकि जिसका उदय होगा उसका उदीरक। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा, क्या लिखा वहाँ पर, अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। यदि एक ही पॉइंट पर होता उनका दोनों का जघन्य
तो
संस्थान पति कहते हैं अजघन्य, जघन्य भी हो सकता है अजघन्य, ऐसा कह देते हैं। वैसा तो है नहीं, अब उसकी बात तो हम बाद में पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ तो दोनों का एक ही पॉइंट पर जघन्य होता है, क्योंकि ओग में जघन्य कहाँ लेना है, पहले गुणस्थान से संयम प्राप्त करने वाला वेदक समय, यानी वो वेदक के साथ, सादी मिथ्या दृष्टि है, वेदक के साथ वो सातवें में जा रहा है, ऐसा जीव लेना, तो दोनों का पॉइंट एक ही है, तो अनंतानुबंधी जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। अब अजघन्य का होगा तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पति तो अजघन्य की होगी, जघन्य नहीं होगा होगा नहीं, क्योंकि दोनों का स्वामित्व एक ही है ये, परंतु स्वामित्व एक होने पर भी उसके उसमें इतनी रेंज हो सकती है, उसी परिणाम के साथ अनंतानुबंधी में अजघन्य की छह स्थान पति रेंज हो सकती है।
इसका जगन्य के साथ इसका अनंत गुणा भी हो सकता है, षट्स्थान पतित बताया,
अनंत गुणा वो वाला देखा भी, यहाँ षट्स्थान में वो भी वहाँ पर भी
वो भी हो ले ले हाँ। सकते
परंतु
षट्स्थान पतित है,
षट्स्थान पतित अन्य भी हो सकते
हैं, अनंत बाद वाला भी,
अनंत गुणा ने एक बार षट्स्थान होने तक उसकी रेंज हो सकती है। अब जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ बारह कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, उदय की अपेक्षा। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा कितना होगा, अनंत गुना अधिक, क्योंकि उनका अपना अपना अपने अपने गुण स्थानों में विशेष दिए साथ होगा, वो प्रत्याख्यान का जघन चौथे वाले चौथे से पांचवें में सातवें में जाने वाले का, प्रत्याख्यान का पांचवें से सातवें में जाने वाले ऐसे अलग अलग स्थान पर, इसलिए उदीरक तो हो सकता है परंतु नियम से अजघन्य होगा, और वो भी कितना, अनंत गुणा अधिक। अब आगे सम्यक्त के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला, लक्ष्मी आप बताएंगे सम्यक्त की जघन्य अनुभाग उदीरणा ओग में किसके होती है, हाँ सपना के इसमें कृतकृत्य वेदक का वो आवली प्लस एक समय बाकी है, उस समय की बात है। वह जीव बारह कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, और यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। यहाँ जघन्य की तो होगी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी जघन्य हमने देखी है, और प्रत्याख्यान की तो सातवें के सम्मुख है चौथे में से, प्रत्याख्यान की पांचवें से सातवें में है, और संज्वलन की तो सपना में है, तो उसकी अपेक्षा यहाँ अनंत गुणा अधिक होगा। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य जहाँ होता है तीसरे से चौथे में जाने वाला, उस समय बारह कषाय और नौ नौ कषायों का क्या होगा, अजघन्य ही होगा,
अनंत गुणा
और अनंत गुणा अधिक होगा। अब अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला, अभी अभी हमने देखा कौन है वो जी, हाँ मंदाबे, अनंतानुबंधी की जघन्य करने वाला कौन है, मिथ्याति, कौन सा मिथ्याति, अभी एकेंद्रिय में भी सम्यक्त के साथ वो संयम प्राप्त करने वाला सातवें में जाने वाला, उसके अनंत अंतिम समय लेना मिथ्यात्व का, सर्व विशुद्ध परिणाम, परंतु वो कब होगा, हाँ सातवें में जाने वाला, वो प्रथम उपशम वाला भी नहीं लिया, ये लिया जी। वो जीव मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का अंतिम समय की बात चल रही, जो जघन्य अनुभाग का उद्गीरक है या अजघन्य अनुभाग का उद्गीरक है, जैसे मिथ्यात्व के साथ हमने अनंत अनुबंधी को लिया था वैसे यहाँ पर भी। और यदि अजघन्य अनुभाग का उद्गीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उद्गीरणा करता है। जहाँ दोनों जघन्य हो सकते हैं वहाँ यदि वो अजघन्य करे तो छठ स्थान पतित बता है। तीन क्रोधों का नियम से उद्गीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उद्गीरणा करता है, क्योंकि उनका जघन्य यहाँ हो ही नहीं सकता, उनका जघन्य अपने अपने स्वामित्व के अनुसार होगा। नौ नौ कषायों का कदाचित उद्गीरक है और कदाचित अनुद्गीरक है। यदि उद्गीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उद्गीरणा करता है, क्योंकि उनका जघन्य तो क्षपणा में होगा, अपने अपने जो स्वामित्व अलग अलग जगह पर, तीन वेदों का तो अपने अपने वेद के अंतिम समय में होगा वैसे। इसी प्रकार तीन क्रोधों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी एक एक के साथ अन्य को लगा लें। तीन क्रोधों को तीन अनंतानुबंधी को, तीन कषायों को, तीन अनंतानुबंधी को चाहिए। तिन्नम कषायण, क्योंकि अनंतानुबंधी के बाबत ये चलेगा, बाकी अप्रत्यागमन प्रत्यागमन उनकी तो बात अलग होगी। यानी यह मान माया लोक की बात है, अनंतानुबंधी मान माया लोक के बारे में ऐसा ही जानना चाहिए, ये बात है। अब आते 114 प्रश्न पर। अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग की को हुआ है, क्या कहा? अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, अब ये कौन सा जीव है? चौथे से सातवें के सन्मुख वाला है। सम्यक स्वर नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है।
यहाँ पे साइज भी दिया।
ओ यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। क्योंकि सम्यक्त्व का तो हमने देखा, तो उसके तो कृत्य में होता है, उसकी अपेक्षा यहाँ क्या है? अजघन्य होगा।
जो वेदक है, जो साहित्य में है, उसकी भी इतनी विशुद्धि हो सकती है क्या? प्रत्याख्यान का जगह हो जाएगा
नेचुरली, उसको तो उदय है ना, उसको तो बारह कषा है कि नहीं है। अब वो चौथे वाला सातवें में जा रहा है तो उसकी विशुद्धि होगी कि नहीं होगी? सम्यक तो का अनुदीरक है वो।
मैं ऐसे ही सोच रहा था, साहित्य की विशुद्धि ज्यादा होती है, दर्शन होने की सपना कर देने वाले की विशुद्धि ज्यादा होगी।
हाँ ठीक, उस काल में हुई थी, अभी तो वो तो हो गई है उसकी। अभी वो साहित्य रूप से है वहाँ पर, तो सम्यक की उदीरणा नहीं है उसकी, अनुदीरक है उसका। तो यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, क्योंकि उनका अपना अपना जो जघन्य है अपने अपने सपना के समय में होता है। वेदक और क्षायिक दोनों लिए यहाँ पर, परंतु उपशम करने वाला नहीं लिया है ना, वहां तो उपशम होगा भी नहीं चौथे से सातवें में जाने वाला, पहले से सातवें में जा सकता था। दो क्रोधों का नियम से उदीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, क्योंकि उनका जघन्य बाद में जाके होता है, ऊपर के गुणस्थानों में या सपना में आता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान मानादि तीन को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ कैसे अप्रत्याख्यान मानादि लिखा है ना, और ऊपर तो वहाँ पर उन्होंने एवं तिन्नम कसायनम लिखा था, वैसे वहाँ पर इसी प्रकार अनंतानुबंधी मानादि को ऐसा होना चाहिए था। कषाय उनको लिखा है, परंतु वहाँ ट्रांसलेशन में अनंतानुबंधी मानादि को, मानादि कषाय यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे वहाँ उन्होंने नहीं लिखा। वहाँ वो नीचे है ना, क्रोधों को लिखा है ना, उसके बदले क्या लिखना, इसी प्रकार अनंतानुबंधी मानादि, हाँ तीन कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब यहाँ आते हैं 114 पर, दूसरा पैराग्राफ, प्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक और नव नौकषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। अनुदीरक यानी वो शायक भी लिया है ना यहाँ पर, पांचवे से सातवें में जाने वाला। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। क्रोध संज्वलन का नियम से उदीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसमें तो यही बात होगी ना सिद्ध, जो वेदक सम्यक्त्व के साथ पांचवे से सातवें में जाने वाला है उसकी अपेक्षा से जो क्षायिक सम्यक् दर्शन प्राप्त करेगा चौथे वाला, उस काल में उसकी विशुद्धि ज्यादा है ना, तभी तो सम्यक्त्व का उसका वहां जगन्य हुआ था, परंतु अन्य में वो नहीं लेना, सम्यक् प्रकृति में तो जगन्य हुआ था, परंतु ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वो तो ऊपर जाके उसका जगन्य होगा, वो चौथे में उसका जगन्य नहीं हो सकता, यानी वो विशुद्धि में मात्र सम्यक प्रकृति में चेंज
जो होता है।
हाँ, अन्य बारह कषाय में वो नहीं लागू होगा। ये देखा हमने, यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। क्रोध संज्वलन का नियम से उदीरक है, प्रत्याख्यान क्रोध के साथ संज्वलन क्रोध का नियम से उदीर्णा होगी उसकी, जो जघन्य की अपेक्षा, उसका जो जघन्य है वो क्षपणा में है, जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान मानादि तीन कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। ऊपर तो ऐसा लिखा है एवं तिन्नम कषायनम, तो उसका स्पष्ट उन्होंने लिखा है। अब क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शेष सब प्रकृतियों का अनुदीरक है। क्यों ऐसा कहा, जहाँ क्रोध का जघन्य होता है कब होता है, श्रेणी में होता है,
क्रोध से
श्रेणी में होता है, तब किस किस का उदय चल रहा है, पुरुष वेद का उदय पहले समाप्त होगा ना, क्रोध संज्वलन का क्षपणा कब होगी, पुरुष वेद के बाद होगी कि पहले होगी, उसके जघन्य की बात चल रही है। तो जब श्रेणी चढ़ना शुरू किया था तो एक वेद और एक कषाय का उदय था, तो पहले किसका उदय मिटेगा, वेद का जो कोई है, और बाद में इसका जघन्य होगा, भले उसने एक साथ उसमें अंतर किया था, दोनों का एक एक प्रकृति का उदय चालू था, एक वेद का और एक कषाय का, परंतु पुरुष वेद का पहले मिट गया उसका, अवेदी हो गया तब जाके क्रोध का जघन्य हो जाएगा। तो जब क्रोध का जघन्य है तो वेदों में से किसी का उदय तो है ही नहीं। अब जहाँ क्रोध का जघन्य है वहाँ मान माया लोग पर किसी का उदय होगा क्या? उदय किसी एक का ही होगा ना, भले सत्ता में है उसकी बात नहीं, यहाँ उदीरना की बात है। तो अन्य किसी का उदीरक है ही नहीं, वो तो जघन्य के उत्कृष्ट उसका सवाल ही नहीं। तो शेष सब प्रकृतियों का अनुदीरक है, सपना में ही लेना है। इसी प्रकार तीनों संज्वलनों को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए। ये जगन्य अनुभाग की उदीरना ये शब्द डाला है। यदि हम केवल इतना ही कहते कि संज्वलन की क्रोध संज्वलन की उदीरना करने वाला, प्रश्न सुनना बराबर, क्रोध संज्वलन की उदीरना करने वाला, मैंने जगन्य शब्द नहीं डाला है, अन्य कौन कौन से प्रकृतियों की उदीरना करेगा ये मेरा सवाल है।
क्या
लक्ष्मी बोलेगी जो हाँ करने दो ना। तो मेरा प्रश्न है जो संज्वलन क्रोध की उदीरणा कर रहा है वो और कौन कौन सी प्रकृतियों की उदीरणा कर रहा है? लक्ष्मी बहन बोलेगी हाँ मैंने जघन्य शब्द नहीं डाला, मैंने क्या कहा, संज्वलन क्रोध की उदीरणा कर रहा है। हाँ करने दो ना, हमने कहा नहीं पढ़ा है। सभी प्रकृति संज्वलन क्रोध के साथ संज्वलन मान होगा, हाँ चार क्रोध का कर और
नहीं नहीं ये तो खाली उन्होंने पूछा है।
संज्वलन
खाली बात,
देखो जगन्य ने उदीरणा कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि उदीरणा कर रहे हैं कि नहीं?
गुणस्थान में बता दो एक एक गुणस्थान,
यानी वो तो अन्य तीन तीन संज्वलन का तो नहीं करेगा, यानी जब क्रोध का कर रहा है तो चारों का कर सकता है।
अनंतानुंदो का करेगा,
कहीं का भी कहीं करने लो, हमने कहा पूछा है कौन से गुणस्थान में कर, हमने गुणस्थान नहीं पूछा है, हमने उदीरक है, उदीरक है तो चारों क्रोध का उदीरक है, मिथ्यात्व का भी है। नियम से नहीं कहेंगे हम अगर गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो उसमें
क्लेरिफिकेशन ज्यादा हो गया।
तो सम्यक प्रकृति की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नीचे के गुणस्थान। सम्यक मिथ्यात्व की करेगा कि नहीं करेगा? तीसरे में,
इसीलिए मैंने बोला गुणस्थान की अपेक्षा बता दो तो
हम क्यों बताएंगे।
जगन नहीं, उन्होंने तो ऐसे
जगन्य की बात ही नहीं है, होने दो ना उत्कृष्ट। हमने क्या कहा, उदीरक है इतना ही कहा। हाँ आएगा, कोई भी वेद हो सकता है,
एक वेद होगा।
नाना जी उनकी अपेक्षा हम बात करेंगे।
उनका कहना क्या है कि अजगन्य के खास साथ खाली क्रोध का भी हो सकता है। तो खाली संज्वलन क्रोध का खाली एक का ही उदय होगा उनका, ऐसा कहना उदीरणा होगा।
क्योंकि जब पुरुष वेद का उदय मिट गया है तो क्रोध संज्वलन का उदीरक चल रहा है, उस समय अन्य किसी का नहीं है, अजगन्य के साथ भी नहीं है, उसकी बात नहीं यहाँ पर। हम उदीरक इतना ही लिया हमने,
इसीलिए मैंने बोला गुणस्थान की अपेक्षा सब बताते जाओ।
हाँ अभी हम आते हैं यहाँ अपनी बात जघन्य के साथ हम सन्निकर्ष लगा रहे, तो शेष सभी प्रकृतियों का अनुदीरक है। अब कहते इसी प्रकार तीन संज्वलनों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। जब हम कहेंगे मान संज्वलन के जहाँ जघन्य है वहाँ अन्य किसी की उदीरणा ही नहीं है, जहाँ माया का है जहाँ लोभ का है ऐसा, जहाँ लोग का है तो अन्य किसी की सत्ता भी नहीं है कहेंगे, यहाँ तो केवल उदीरना नहीं इतना कह रहे हैं। हाँ। अब स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग की उदीरना करने वाला ये कौन सा है? सपना में। हाँ चार संज्वलन का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि वो क्रोध का मान का माया के जिसके साथ चढ़ रहा है उसका उदीरक होगा, उसका जगन्य नहीं कहा, उसका उदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा कितना होगा, अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभव की उदीर्णा करता है, क्योंकि पहले स्त्रीवेद की क्षपणा करेगा, बाद में आगे चलकर क्रोध की करेगा। इसी प्रकार दो वेदों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसमें भी अपना अपना जो जघन्य कर रहा है, तब संज्वलन का अजघन्य होगा, अनंत गुना अधिक होगा। हास्य के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला ये कब होगा? अपूर्वकरण के अंत में, शपक में। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसक वेद और चार संज्वलन का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। तीन वेदों में से किसी को, जिसको जो वेद होगा, यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, क्योंकि उनकी जघन्य तो क्षपणा तो बाद में जाके होती है, तो इस पोजीशन पर उनका अनंत गुणा अधिक है। रति का नियम से उदीरक है, हास्य के साथ रति जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, अभी उसके साथ ये जघन्य हो भी सकता है, और यदि अजघन्य लेंगे तो षट्स्थान होगा। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, और यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है।
सपक श्रेणी में भी अपूर्वकरण में अंत में एक का जघन्य होगा, अन्य का जघन्य नहीं भी हो सकता है।
हाँ, यही बात बतानी है यहाँ पर, छह स्थान पतित में ले लेना उसको। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, तथा इसी प्रकार रति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। हास्य रति के साथ भय जुगुप्सा तो हो सकता है, अरति शोक नहीं हो सकता है। ये अन्य जीव की अपेक्षा ले लेना, जिसको अरति शोक का जघन्य है उसके साथ, क्योंकि उसके उदय के साथ वो अपूर्वकरण में उसका अंत हो गया है गुणस्थान का। भय के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला पांच नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। अन्य पांच की बात, यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, और यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। अब जो भय के जघन्य की कर रहा है वो चार संज्वलन और तीन वेदों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, जो जिसका उदय होगा। यदि उदीरक है तो क्या होगा? क्योंकि इनका जघन्य तो ऊपर जाके होगा, तो यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, क्योंकि उन जो बाद में जो क्षपणा होने वाली उनका तो अनुभाग अनंत गुणा अभी और हीन होने वाला है, इस पोजीशन पर अनंत गुणा अधिक है जघन्य की अपेक्षा। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, जैसे भय के साथ लगाया वैसे जुगुप्सा के साथ लगाना। ये तो हमने ओघ में देख लिया सभी प्रकृतियों का सन्निकर्ष। ओघ में तो सभी में क्या लगता है, क्षपणा की बात लगती है, जो मनुष्य त्रिक में कहीं के घटित होगी, और यहाँ तो अभी हम आदेश से देखेंगे। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सोलह कषाय और छह नौकषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। यहाँ सोलह सोलह सब कषाय लिए, क्योंकि अनंतानुबंधी का भी जघन्य अंतिम समय में होगा, और यहाँ प्रथमोपशम सम्यक होने के एक आवली और एक समय पूर्व में बात हुई मिथ्यात्व की। ख्याल में आता है ना, अंतर किया है प्रथम स्थिति में जो निषेक है उसमें से उदीर्ण होते होते घट गया आवली प्लस एक समय बाकी, तब उसकी उदीर्ण होगी। उसके बाद उसको उदीर्ण नहीं कहेंगे, भले उदय चल रहा है उसका। और अनंतानुबंधी के तो अंतिम समय लेना, मिथ्यात्व का अंतिम समय। हाँ, नपुसक वेद का नियम से उदीर्ण कहें, क्योंकि अनार्की की बात चल रही है। जो जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग की उदीर्ण करता है। मयंक भाई, यहाँ उसको अजगन्य क्यों कहा नपुसक वेद को? उसका जगन्य कहाँ जाके होगा? सम्य दृष्टि, ये नारकी की बात चल रही है ना। नरक में सम्यक को प्राप्त करने के बाद जब वहाँ उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, उस काल में नपुसक वेद का जगन्य करेगा।
वो
चौथे गुणस्थान की विशुद्धि होगी, यहाँ पहले गुणस्थान में अभी, इसलिए यहाँ अजगन्य। सम्यक्त्व के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला बाला हो गया। करने वाला अभी सम्यक्त्व की जगन्य कब होगी?
सपना में।
सपना में नारकियों में देखना है तो उसकी कृतकृत्य वेदक का जो आवली प्लस एक समय बाकी है तब उसका कृतकृत्य वेदक। नीचे के नरकों में अलग कहेंगे हम तो। वहां 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। और यदि उदीरक है तो जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग की उदीर्ण करता है। नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, यानी वो नारकी में रहते हुए बाद में उसकी
जगन्य हो जाएगी।
हाँ, 12 कषाय 6 कषायों का बाद में जो विशुद्धि अधिक बढ़ेगी तब की बात है। ये नपुसक वेद का नियम से उदीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग की उदीर्ण करता है। यहाँ नपुसक वेद में भी यही बात लगा दी। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। हाँ, यहाँ सम्यक्त्व के बारे में मात्र उसके अनुभाग में फर्क पड़ेगा, अन्य कषायों में नहीं। हाँ, कृतकृत्य वेदक में उसकी विशुद्धि है, परंतु वो किस पर कार्य कर रहे, सम्य प्रकृति के बारे में उसका जगन्य हो रहा है। अन्य 12 कषायों में जगन्य नहीं हो रहा है उसका। हाँ, नपुसक वेद का भी नहीं।
इसलिए मैंने कल श्रद्धा गुण का पूछा था ना कि श्रद्धा गुण में जब भी विशुद्धि की अपेक्षा जब एकदम कम होता है तभी चारित्र गुण में इतना विशुद्धि नहीं हो सकती है, उसकी अलग अलग है।
हाँ, हर एक की अलग अलग है, हम यही देखते हैं ना, एक ही परिणाम है। हाँ, अलग अलग कर्मों में अलग अलग क्यों चेंजेस हो रहे हैं? ये तो बात अपना द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को पुष्ट करने वाले।
हाँ,
एक ही निमित्त है।
हाँ,
और हर एक में अलग अलग कार्य हो रहा है, कर्मों में भी हर एक कर्म में अलग अलग कार्य हो रहे हैं, एक समय का एक परिणाम है। तो जिस परिणाम में दर्शन मोनि का पूरा क्षय हो जावे,
हाँ,
और उस समय भी इनमें इनमें कुछ वहाँ उनकी विशुद्धि तो बाद में होगी, जो जो बाद में उसकी जो कुछ है,
तो दोनों का परिणाम अपना। हाँ,
अनंतानुबंधी बंदी हुआ, बंदी क्रोध के अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला। मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व की उदीर्णा करेगा कि नहीं करेगा? मंदाबेन, अनंतानुबंधी की जघन्य करने वाला मिथ्यात्व की करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, क्या हो गया? हाँ, अनंत उसकी उदीर्ण रुक गई है, अभी वो उदीरक नहीं है। उदय है उसका, उदीरक नहीं है। उदय तो मिथ्या तो के अंतिम समय तक है, उदीर्ण कब रुक गई, आवली प्लस एक समय था तभी उसकी उदीर्ण रुक गई। तो अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला तीन क्रोध और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है, क्योंकि इनका जघन्य तो समय दृष्टि के होगा बाद में। छह नौकषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है, उनका भी जघन्य समय दृष्टि के होगा। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष से जान लेना चाहिए। अब अप्रत्याख्यान क्रोध के अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। इसका अर्थ समझ में आया? कदाचित अनुदीरक है, इसका अर्थ क्या है? साइक समय दृष्टि है। और कदाचित उदीरक है यानी वेदक समय दृष्टि, यानी दोनों को ही सम्यक्त्व होने के बाद इतनी विशुद्धि हो सकती है।
जैसे आगे हमने जो देखा सम्यक्त्व की जगन्य होती है, तभी अप्रत्याख्यान की जगन्य हो सकती है, प्रत्याख्यान की जगन्य हो सकती है, क्योंकि जो संयम के सन्मुख हुआ है।
सम्यक्त्व की जगन्य कहाँ है वहाँ पर?
नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आगे जो हमने पढ़ा ना कि सम्यक्त्व की जब जगन्य होती है तभी बाकी के अनंत गुणा ही होगा,
बाकी की
अनंत गुणा ही होगा, ये जो
नेचुरली, क्योंकि
नहीं मैं क्या सोच रहा था कि जो चौथे के चौथे गुणस्थान में सातवें में जाने वाला है,
चौथे से
सातवें में,
हाँ।
वहाँ पे उसका दोनों प्रोसेस एक साथ में नहीं हो सकता है? वैसे अरे सपना भी होगी और सातवें
सपना कैसे होगी?
सम्यक्त्व की सपना तभी नहीं हो सकती है, सम्यक्त्व की सपना तो कहाँ पे भी हो सकती है?
हाँ, चौथे से छठे
चौथे से सातवें तक से कहाँ पे भी, छठे में नहीं होगी, नहीं छठे में भी होगी,
चौथे
में जो चौथे से सातवें में जा रहा है अंतिम समय में, उसी समय उसकी सम्यक्त्व की सपना
उसकी या तो सपना होगी या तो चौथे से सातवें में जाएगा ना, सपना करते करते थोड़ी चलेगा। और उस समय वो सम्यक्त्व की जघन्य होगी, अन्य कर्षण की क्यों होगी जघन्य?
नहीं खाली पूछा है,
अलग की है ना। यहाँ क्या चल रही बात, नानकियों में बात चल रही है। अप्रत्याख्यान क्रोध का जहाँ जघन्य है वो किसके होगा? समय दृष्टि के होगा। तो समय दृष्टि है तो कहते कदाचित समय तो का उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, उसका अर्थ क्या है? कदाचित वेदक समय दृष्टि, कदाचित साई समय दृष्टि, दोनों ही मिले ना वहां पर। यानी जहाँ अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य होने योग्य परिणाम है, ऐसा नहीं कहा मात्र क्षयिक की होती है,
दोनों की होगी।
हाँ, यदि उदीरक है यानी सम्यक्त्व का, यदि उदीरक है
अनंत गुणा,
या सम्यक्त्व की बात चली, यदि उदीरक है
अनंत गुणा,
तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है, क्योंकि यदि उदीरक है ना, यदि वो वेदक समय दृष्टि है, तो सम्यक्त्व की जघन्य जो कृतकृत्य वेदक वाले की होती है उसकी अपेक्षा यहाँ उसकी अजघन्य है, अनंत गुणा अधिक। दो क्रोध अप्रत्याख्यान के साथ कौन लेना? दो क्रोध प्रत्याख्यान और संयोजन, दो क्रोध और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, क्योंकि ये तो चौथे गुण स्थान वाले हैं ना, नारकी की बात चल रही है यहाँ पर। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, देखो ये सम्यक दृष्टि की विशुद्धि है, उसने अप्रत्याख्यान का जघन्य कर दिया, अब उसको अन्य दो का क्या करेगा?
अजघन्य होगा ना,
ही नहीं लगाना। अजघन्य क्यों? जघन्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए अन्य कोई बात नहीं है कि जो जघन्य करने के लिए, ओघ में उनका जघन्य ऊपर के गुण स्थानों में होता था।
अच्छा, यहाँ पे
नारकी के लिए उनका जघन्य इसी पोजीशन पर होगा। अच्छा, तो जघन्य भी हो सकता है और जघन्य भी हो सकता है। और जघन्य तो थोड़ी रेंज में होगा, जैसे अन्यत्र अगर हम भी मनुष्यों में देखते तो मनुष्यों में जहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य होता है कहाँ होता है? चौथे से सातवें में जाने वाले का, और प्रत्याख्यान का जघन्य पांचवे से सातवें में जाने वाले का,
वो अनंत गुना होगा।
तो उसका तो अनंत गुना ही अधिक होगा, उसका उसके साथ जघन्य हो ही नहीं सकता। नारकी में 12 के 12 कषाय जहाँ सम्य दृष्टि की विशुद्धि है उसका अपना अपना जघन्य होगा। तो जहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य है वहाँ नारकी के लिए प्रत्याख्यान का जघन्य हो भी सकता है, और जहाँ हो सकता है तो उसकी रेंज में अजघन्य भी हो सकता है। ये तो हमने सर्वत्र देखा है। इसलिए जहाँ जघन्य अजघन्य दोनों हो सकते हैं, तो यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरना करता है। ये बात ख्याल में, हर जगह यही बात लगाना। ओघ में अगर देखते हैं तो हम कहेंगे वो नियम से अजघन्य है और अनंत गुणा अधिक है। यहाँ जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी हो सकता है, तो अजघन्य ऐसा ज्यादा नहीं होगा जो मात्र अनंत गुणा वाला होगा, वो षटस्थान पतित वाला। छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि ये भी समय दृष्टि है। छह नौ कषायों का जघन्य भी इसी जीव के हो सकता है, तो यहाँ पर जघन्य भी हो सकता है और थोड़ा वो रेंज वाला अजघन्य भी होगा उसका। तो यदि अजघन्य का है उदीरक तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरना करता है। इसी प्रकार 11 कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये बात है कि नारकियों में 12 कषाय और छह नौ कषायों का जघन्य और नपुसक वेद का भी किसके है? समय दृष्टि। कौन से? वेदक वाले के क्षायिक वाले दोनों ही होते।
दोनों को
अभी हमने देखा था ना, सम्यक प्रकृति का उदीरक भी हो सकता है, अनुदीरक भी हो सकता है। तो उस काल में जब उनकी विशुद्धि ज्यादा है उस काल में उनके उनका जघन्य अनुभाग की उदीरना होगी। आप कहेंगे अभी क्षायिक है तो क्या कार्य कर रहा है, उसका जघन्य क्यों होगा, विशुद्धि क्यों होगी? तो ये संक्लेश विशुद्धि तो सहज रूप से कम अधिक होते रहते हैं। नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग की उदीरना करने वाला नारकी लेना कौन सा होगा? मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा। तो जो नपुसक वेद की जघन्य अनुभाग की उदीरना करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक, लक्ष्मीबेन अनुदीरक कौन होगा? शायक समय दृष्टि, और उदीरक है वो वेदक समय दृष्टि। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, क्योंकि उनका जघन्य कब होता है? सम्यक प्रकृति का कृतकृत्य वेदक वाले, उसकी अपेक्षा ये जीव कितना करेगा? अनंत गुणा अधिक करेगा। यानी जो उदीरक है वो तो कृतकृत्य वेद नहीं, जो उदीरक है वो वेदक सम्यक दृष्टि है, और अनुदीरक है वो क्षायिक है, और उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा, जघन्य की अपेक्षा यानी कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा ये कितना होगा? तो अनंत गुणा अधिक होगा। ख्याल में आई बात? 12 कषाय जो नपुसक वेद का जघन्य कर रहा है उसकी बात है, 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, जिसका उदय होगा उसका उदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का, यानी जहाँ पर नपुसक वेद का जघन्य हो रहा है वहाँ वो 12 कषाय 6 नौ कषायों का भी जघन्य हो सकता है, या उसके विशिष्ट रेंज में अजगण्य भी हो सकेगा। इसलिए कहेंगे यदि अजगण्य अनुभाग का उदीरक है तो जगण्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजगण्य अनुभाग की उदीरणा करता है। अब हास्य के 12 कषायनों 6 कषायों का तो हमने देख लिया है, उसी में एक एक को अलग अलग बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि के ही वो जगण्य हो रहा है। तो हास्य के जगण्य अनुभाग की उदीरणा करने वाले के सम्यक्त्व का भंग नपुंसक वेद के जगण्य अनुभाग की उदीरणा करने वाले के समान है। इसका अर्थ है वो सम्यक्त्व की उदीरणा करेगा, करने वाला भी होगा या अनुदीरक भी हो सकता है, यानी वो वेदक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है। यदि वो सम्यक्त्व का उदीरणा करने वाला होगा तो कितना होगा, तो अजगण्य है, अनंत गुना अधिक वाला है। वह 12 कषाय और भय जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। ऊपर नपुंसक वेद के साथ 12 कषाय और 6 कषाय दिए, यहाँ तो हास्य के साथ हम कहेंगे अरतिशोक तो हो ही नहीं सकती,
भय जुगुप्सा ही ऑप्शन
है। तो भय जुगुप्सा को लिया, यहाँ कदाचित वाला लगाना था, इसलिए रति का तो नियम से उदीरक है कहेंगे। तो भय जुगुप्सा और 12 कषाय में कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीर है, क्योंकि उनकी भी जघन्य इसी स्वामित्व के साथ होती है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। नपुंसक वेद और रति का नियम से उदीरक है, क्यों? ये जो नारकी है और हास्य के जघन्य अनुभाग की उदीरणा कर रहा है वो नपुंसक वेद और रति, क्योंकि नपुंसक वेद सर्वत्र है, उसका उदीरक तो है ही है, उदीरणा उसके न हो ऐसा कभी नहीं बन सकता। और हास्य है तो रति भी है। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी हास्य के बदले वहां रति लिख दो। तथा इसी प्रकार अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी उसके हम कहेंगे वो तो सम्यक्त्व का भंग उदीरक है भी या नहीं भी है, वो सब लगाना उसमें। अब नीचे का पैरेग्राफ 300 नंबर का पैरेग्राफ, भय के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाले के सम्यक्त्व और नपुंसक वेद का भंग हास्य के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाले के समान है। इन्हें क्या, सम्यक्त्व का वो उदीरक होगा भी नहीं भी होगा,
होगा तो अनंत गुणा वाला,
और होगा तो कितना होगा, अनंत गुणा अधिक होगा जघन्य।
नपुंसक
वेद का नियम से उदीरणा करने वाला होगा
जघन्य भी है, जघन्य
हाँ वो जघन्य भी होगा, अजघन्य भी, और अजघन्य होगा तो षट्स्थान पतित होगा। अब भय के साथ 12 कषाय और 5-9 कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। जिसका उदय है उसका उदीरक कहलाएगा। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, जघन्य अजघन्य कुछ भी हो सकता है। यदि अजघन्य की अनुभाग का उदीरक, अजघन्य की अजघन्य वो की नहीं चाहिए, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है वो की लगाए ना अनुभव, हाँ यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि जैसे हास्य के साथ रति नियम से लिया वैसे यहाँ जुगुप्सा को नहीं ले सकते, तो उसका उदीरक होगा भी नहीं भी होगा, यदि होगा तो जघन्य भी हो सकता है और अजघन्य भी हो सकता है, ये सब लगाना। अब कहते इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, ये जो सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है बाकी बातें बताइए, पहली पृथ्वी में तो लागू होगी, क्यों आगे क्यों नहीं होगी?
शायिक
शायिक नहीं है, तो वो तो मात्र वैदिक समय दृष्टि में ही घटित करेंगे हम, तो समय प्रकृति के नियम से उगिरना तो होगी सर्वत्र। तो दूसरी से लेकर सातवीं तक किसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है।
गलत तीसरा,
इनमें 12 कषाय और 7 9 कषायों के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला
सम्यक्त्व का नियम से उदीर्ण है ना,
सम्यक्त्व का
नियम से उदीर्ण होना चाहिए ना।
एक मिनट, क्या गड़बड़ी कर दी।
नियम से उदीरक होना चाहिए,
इतनी विशेषता है कि इनमें दूसरी से सातवीं ऊपर क्या है, भय जहन इंदुगुंज परमाय विद्यादि सत्तमाति एवं चेव नवरी 12 कसाय 7 कसाय जगन उदीरा समसिया तंतु छठाण पदित
सत्तन पदित।
बारह कषाय 7 कषाय के जगन्य अनुवाद की उदीर्णा करने वाला
का जगन्य भी हो सकता है, अजगन्य भी हो सकता है, वहाँ पे सम्यक्त्व का जगन्य भी होगा अजगन्य भी होगा, और अजगन्य होगा तो छठाण पदित होगा।
कदाचित उदीरक कदाचित अनुदीरक कैसे कहा,
नहीं ऐसे वो तो निकलना है, नियम से उदीरक है और कदाचित जगन्य वाला है कदाचित अजगन्य वाला है।
हाँ।
और अजगन्य वाला है तो सत्ता
जगन्य अनुभाग का उदीरक है या अजगन्य अनुभाग का उदीरक। हाँ। ये ऐसा करना, इतनी विशेषता है कि इनमें वो पेंसिल से निकाल देना 12 कषाय और 7 9 कषायों के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित
जगन्य उदीरक,
वो नहीं ये आगे का निकाल देना, कदाचित जगन्य अनुभाग का उदीरक है या अजगन्य अनुभाग का उदीरक। देखो इतनी विशेषता है कि इनमें 12 कषाय और 7 9 कषायों के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित जगन्य अनुभाग का उदीरक है। बीच में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द निकाल देना, उदीरक से लेकर तो तक, क्योंकि नियम से उदीरक हो गया ना। क्या ऐसा लेना है, एक मिनट,
नियम से उदीरक के
ना 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 उपशम समय दृष्टि लिया क्या उन्होंने।
हाँ उपशम समय दृष्टि,
उपशम समय दृष्टि भी ले सकते हैं।
हाँ,
इसलिए मैंने बोला ना पेंसिल से करो पहले। उपशम समय दृष्टि लिया उन्होंने। हाँ, तभी अनुदीरक हो सकता है ना।
हाँ।
अनुदीरक कब होगा, औपशमिक
के काल में अनुदीरक,
औपशमिक के काल में जब उसकी विशुद्धि ज्यादा है।
नहीं बराबर है,
हाँ औपशमिक समय दृष्टि, वहां भी हमने शायिक लिया, वहां क्या औपशमिक लेना था क्या।
नहीं वहां पे तो बराबर लिया है, वहां पे तो जगदी की बात है ना,
वही अप्रत्याख्यान क्रोध के जगन में लगाया था,
तो वहां पे तो नियम से है नहीं और नहीं भी है।
स्वामित्व में उन्होंने सम्यक्त की चर्चा नहीं की, समय दृष्टि इतना ही लिया है, उपशायिक है कि औपशमिक है कि वेदक है उसकी बात
कुछ बताया नहीं है, तो वो गड़बड़ हो रही है।
हम तो क्षायिक की अपेक्षा विचार कर रहे थे ना अभी तक, औपशमिक वाले को तो हमने याद नहीं किया था, क्योंकि यहाँ नीचे कदाचित अनुदीरक है उसका अर्थ क्या है,
तो औपशमिक समय दृष्टि।
चलो हम यहाँ पढ़ते हैं यार।
नहीं वहाँ पे तो बराबर लिया है ना, क्योंकि अप्रत्याख्यान कर जब जगन्य कभी होगी सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि की होगी, तो उपशम के काल में इतनी विशुद्धि हो सकती है?
क्यों नहीं होगी, गुण संक्रमण हो सकता है तो उसमें विशुद्धि नहीं होती। हम तो अभी इतना ही रखेंगे, कदाचित अनुदीरक में औक्षमिक सम्यक दृष्टि लेंगे हम। यदि उदीरक है तो जगन्य अनुभाग का उदीरक है या अजगन्य अनुभाग का उदीरक है? यदि अजगन्य अनुभाग का उदीरक है तो जगन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजगन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। ख्याल में आई बात ये? हाँ देखो देखो अभी ये क्या किसके बारे में चल रही थी बात। हाँ मैंने ये कहाँ की बात की थी वो बताती हूँ। हाँ 115 पृष्ठ पर निकालना, ये बात नारकियों में बात चल रही है। 115 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ 297 नंबर का फिर पढ़ेंगे हम दो लाइन। अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला, नारकी की बात चल रही है। ये कौन सा नारकी हुआ? सम्य दृष्टि नारकी। तो सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। तो यहाँ हमने दो ही बातें सोची थी, वेदक और क्षायिक। तो उसमें औक्षमिक सम्य दृष्टि को हमने विचार नहीं किया था, तो उसको भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सातवें नरक तक भी वो घटित किया है। यहाँ क्या लिखा देखो,
यहाँ सातवें नरक पर
यहाँ लिखा है इसी प्रकार। एक मिनट, अब यहाँ 117 पृष्ठ पर कि पहली पृथ्वी में ऐसा जानना चाहिए तो ठीक है, कहते हैं दूसरी से लेकर सातवीं तक इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, मिला ना
सम्यक
कि 12 कषाय और 7 नौ कषायों के जगन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। वहाँ भी अप्रत्याख्यान क्रोध की बात चल रही है, उसके साथ लिया था। यहाँ 12 कषाय की बात चल रही है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, और यदि अजघन्य है तो वो षट्स्थान पतित होगा। तो यही बात वहाँ बताई थी उन्होंने कि अप्रत्याख्यान क्रोध का जो जघन्य कर रहा है वो सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, और यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा अधिक अजघन्य की करता है, ये वहाँ बताया था। तो पहली पृथ्वी में तो कृतकृत्य वाले के जघन्य के साथ उसकी कंपैरिजन की थी, और यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो जघन्य का भी हो सकता है और अजघन्य का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका जघन्य कब होगा? वेदक वाले के ही होगा जघन्य। फिर से पहली पृथ्वी में अप्रत्याख्यान का जहाँ जघन्य है वहाँ सम्यक्त्व का यदि वो उदीरक होगा, नहीं होगा उसकी बात छोड़ दो, यदि होगा तो क्या होगा? अनंत गुणा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि पहली पृथ्वी की अपेक्षा सम्यक्त्व का जघन्य कृतकृत्य वेदक में होता है, और दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक जहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य है वहाँ सम्यक्त्व का वो कर रहा है, तो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जघन्य की अपेक्षा से वेदक सम्य दृष्टि है उसका जघन्य में जघन्य उदीरणा चल विशुद्धि के कारण, और वहाँ कृतकृत्य में जघन्य था उसकी अपेक्षा से अजघन्य होगा तो कितना होगा? अनंत गुणा अधिक होगा, और यहाँ अजघन्य होगा तो कितना होगा? षट्स्थान वाला होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। शायक की हो भी सकती है वहाँ पर, उपशम की भी हो सकती है, वहाँ तो तीनों ही ले सकते हैं, यहाँ तो मात्र
उपशम की
औपशमिक या वेदक ले सकते हैं। हाँ विशुद्ध भी होती होगी तीनों की। क्योंकि हमने देखा ना, शायद तो दूसरा कोई कार्य गणपति औपशमिक वाला तो विसंजना का कार्य करेगा, उस काल में अन्य तीन कषायों का अनुभाग का जगन्य हो सकता है, परंतु वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वेदक वाले के भी उन्होंने कदाचित लिया ना उसके साथ, उसकी भी इतनी विशुद्धि हो सकती है, वो भी ले लिया उन्होंने।
यहाँ पे भी प्रथम उपशम में भी विशुद्धता ली है ना हम लोग ने
तो, हाँ यही दोनों में वो कार्य होता है, शायक वाले को ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं बताया।
यहाँ पे कहीं कहीं एकदम खोल के नहीं बताया उन्होंने,
हाँ ना। वहाँ शायक नहीं भी लेते तो चलता था, करण परिणाम में वहाँ तो औपशमिक और वेदक को लेंगे हम, वहाँ पर भी, वहाँ पर यानी 115 नंबर पर भी वेदक और औपशमिक ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य हो रहा है।
तो वेदक समय पर उसकी जहाँ पे चौथा गुणस्थानी है, जिसने एक बार समय पर प्राप्त किया है, उसकी विशुद्धि इतनी नहीं बनेगी जो प्रथम अक्षम के काल में बढ़ी है। It does it mean that?
उसके कहाँ यह प्रश्न आया?
नहीं, क्योंकि जो बात क्या हुई करण परिणाम में विशुद्धि इतनी बढ़ेगी उसके पश्चात,
पर इतनी बड़ी है वहाँ उस काल में तो अप्रत्याख्यान का जघन नहीं हुआ था,
नहीं वहाँ पे विशुद्धि की उन्होंने, वही जीव ने जब भी आपका अनंतानुबंधी की विश्वयोजना की, तभी वहाँ पे क्या हो रहा है कि चारित्र गुण में कुछ विशुद्धि के अपेक्षा कुछ कार्य हो रहा है,
वही तो बात चल रही है ना यहाँ पर। परंतु उतनी विशुद्धि सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करने वाले के भी है कि नहीं है, कि अकेले औपशमिक वाले को लिया,
वही मेरा क्वेश्चन है, वो मैं पूछ रहा हूँ
क्वेश्चन उतना, यहाँ तो उसका उत्तर है ना, जो उसकी जघन्य कर रहा है वो इसका उदीरक है भी और नहीं भी है, उसी में क्या होता है। हाँ, उन दोनों की समान होगी तभी तो दोनों को जघन्य हो सकता है, नहीं तो वहाँ कहते वो तो अनुदीरक ही है कह देते, ऐसा तो नहीं कहा,
नहीं कहा
नहीं कहा का अर्थ क्या है, वेदक वाले की भी इतनी विशुद्धि है और इसके भी इतनी विशुद्धि हो सकती है, जघन्य तो एक ही कोई होगा ना, जघन्य में वेरिएशन हो सकते हैं।
नहीं, मैंने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, करण परिणाम में ही विशुद्धि ज्यादा होती है, तो जहाँ एक बार समय का प्राप्त किया, अच्छा वहाँ पे
दोनों जगह करण तो है ही, अनंतानुबंधी की विसंजना कर रहा है तो करण तो दोनों जगह है, औपशमिक के लिए जो करण किए थे वो अलग, अनंतानुबंधी के लिए जो करण कर रहा है वो अलग है ना। हाँ, तभी तो हो सकता है।
हाँ,
क्योंकि क्षायिक वाले को कोई अन्य कोई भले विशुद्धि होगी उसकी, परंतु करण नहीं है यदि ऐसा देंगे। ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे हम तो नारकी के बाद समाप्त होगी। सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, बारह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, उदय की अपेक्षा।
ये दूसरे से सात्विक पूछता,
दूसरे से सात्विक की नहीं ली
उसकी बात है ना,
सम्यक्त्व का पहले हुआ था। हाँ, पहले हुआ था,
ये दूसरे से
सामान्य नारके में हो गया था। बराबर, ये दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक, दूसरी से सातवीं तक, वहाँ सम्यक्त्व की जघन्य कब होगी, वेदक समय दृष्टि के बारह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य का है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है, यानी उसका भी जघन्य यहीं पर इसी जीव को हो सकता है। नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, परिणाम वही है उसका सर्वविशुद्ध परंतु उसमें उसका अनुभाग की वेरिएशन हो सकता है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। जहाँ जघन्य नहीं हो सकता वहाँ उसको अनंत गुणा कहेंगे, यह जघन्य हो सकता है तो इसका जो अजघन्य है वो छह स्थान पतित वाला होगा।
ये ऊपर जो हमने पढ़ा सात कसाई और बारह सात नौ कसाई और बारह कसाई
कहाँ पर,
हमने जो ऊपर के पैराग्राफ में दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में लिया वहाँ पे उसकी जघन्य जब भी होती है तभी सम्यक्त्व का उदीरक भी है अनुदीरक भी है।
उसकी तो चर्चा करी ना,
तो वो प्रथम उपशम के काल में ही होगा क्योंकि विषय योजना के काल में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
प्रथम उपशम काल में जो विषय योजना कर रहा है
उसकी अपेक्षा ही वो होगा।
हाँ, हाँ।
तो उसका जघन्य वहाँ पे होगा।
हाँ।
तो हमने जो सोचा कि विषय योजना के काल में भी वेदक सम्यक सृष्टि जो विषय योजना करता है तभी भी करण परिणाम होता है,
उसी की तो चर्चा की ना हमने अभी, आपको फिर क्यों प्रश्न आया? वहाँ बारह कषायों का उदय है कि नहीं है?
हाँ।
बारह कषायों का उदय उदीरणा चल रही है कि नहीं
चल रही है?
औषम समय तो हो या वेदक समय दृष्टि
चल रही है,
उन्हीं के जघन्य अनुभाग उदीरणा की बात चल रही है। हाँ। तो अभी क्या सवाल आया?
जो वेदक समय दृष्टि विश्व योजना करेगा करण परिणाम पूर्वक उसकी भी शुद्धि इतनी नहीं होगी जो प्रथम अवसर के काल में विश्व योद्धा।
ऐसा कहाँ लिखा?
ऐसा लिखा नहीं, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ।
तो ये स्टेटमेंट ही नहीं होता, उसका जघन्य करने वाले के सम्यक्त्व का उदीरक है भी और नहीं भी, उसका अर्थ क्या है? दोनों को समान हो सकते है ना, नहीं तो उसका अजघन्य बताते।
अच्छा, तो दोनों का
जघन्य बता रहे है, ये तो उन्होंने बात बता दी है कि दोनों में ही होती है। जैसे हम अन्यत्र देखते हैं क्रोध संज्वलन का उपशम श्रेणी में भी होता है, क्षपक श्रेणी में भी होता है, ऐसा कहा है कि क्षपक श्रेणी में ही कहा है, वैसे यहाँ दोनों में कहा है, इसका अर्थ क्या है?
दोनों जगह समान
क्योंकि जघन्य, हाँ, विशुद्धि दोनों की है। ये तो अपनी नारकी की बात हो गई, और कल तीरियन चौन की बात देखते हैं। हाँ, 298 में, हाँ, नपुसक वेद के जघन्य करने वाला अनुदीरक में वहाँ भी औपशमिक क्षायिक कोई भी ले सकते ना, वैसे अपने, हाँ, अपने हिसाब से तो हमने औपशमिक ही लिया है सब जगह। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ प्रेरणा में।